ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक नंबर 4। इस अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु को भगवान से राजा चित्रकेतु का भगवान विष्णु से भेंट। अन्य जगह इस अध्याय का नाम दिया हुआ है कि राजा चित्रकेतु का वैराग्य और भगवान संकर्षण देव का प्राकट्य। अब उस दृश्य पर चलिए, उस कथा के जहां से शुरुआत हो गई इस अध्याय और पिछले अध्याय जहां समाप्त हुआ है। अंगिरा जी तो चित्रकेतु को उपदेश दे चुके, उसके बाद दो श्लोक पिछले अध्याय में नारद जी बोलते हैं और उनको एक ब्रह्म विद्या का मंत्र देते हैं चित्रकेतु महाराज को, और यह बताते हैं कि इस मंत्र को तुम 7 दिन और 7 रात तक अगर जप कर लोगे तो तुम्हें भगवान संकर्षण देव का दर्शन होगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि तुम अगर ठीक से इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान तुम्हारे समक्ष प्रकट के होंगे। अब इस अध्याय में हम लोग अब यह सुनेंगे कि जब शोकाकुल चित्रकेतु महाराज अपने पुत्र वियोग में व्यतीत हैं तो दो ऋषि अंगिरा और नारद जी उनका उद्धार करने हेतु उपदेश दिए, और यह सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता है। यह नहीं कि राजा चित्रकेतु बड़े मोह में थे और हम लोग बड़े वैरागी हैं। सबके ऊपर यह सिद्धांत लागू होता है, सब कहीं न कहीं आसक्त हैं, किसी न किसी विमोहन में पड़े हुए हैं। इस संसार में किसी ने किसी को बांध नहीं रखा है, लेकिन मोह की जो बंधन है वही हम लोगों को इस संसार में बांध दी है, जिसके चलते हम लोग इस संसार में पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अब जो जीवात्मा शरीर छोड़ चुका था, जो चित्रकेतु का पुत्र बनकर के आया था, अब उसको नारद ऋषि अपने योग बल से उस जीवात्मा को जीवित करेंगे, और जीवित करने के बाद वही जीवात्मा चित्रकेतु से वार्तालाप करेगा। पिछले अध्याय के 27वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने, ऐसे तो श्लोक के अंदर नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी अनुवाद में प्रश्न उठाए हैं। चित्रकेतु और अंगिरा जी का जब वार्तालाप हुआ है तो एक श्लोक के अंदर स्वस्तेन शब्द आया है। कहते हैं अंगिरा जी राजा चित्रकेतु को कि तुम स्वस्थ होकर के विचार करके तुम सोचो कि तुम कौन हो। प्रभुपाद जी अनुवाद में प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि तुम शरीर हो या मन हो या जीवात्मा, और तुम्हारा शरीर से क्या संबंध है, और यह शरीर छोड़ने के बाद तुम कहां जाओगे। अगर यह प्रश्न प्रभुपाद जी ने उठाया है, अगर हम लोग इन प्रश्नों को समझें और ठीक से समझ लें स्वस्थ होकर के श्लोक के अनुसार, इस श्लोक में यह स्वस्थ शब्द से संकेत किया जा रहा है कि सब व्यक्ति को मोह रूपी बीमारी ने पकड़ रखी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोह में और इस देह में न फंसा हो। उसके लिए प्रभुपाद जी अपने तरफ से प्रश्न उठाते हैं कि यह चित्रकेतु तुम स्वस्थ होकर के विचार करो, सोचो कि तुम कौन हो, और कौन हो तुम, देह हो या मन हो या शरीर हो। यह प्रश्न सबके ऊपर लागू होता है, यह नहीं कि किसी एक के साथ। हम लोगों से भी अगर कोई पूछे, आप लोगों से भी कोई पूछे, किसी से भी कोई प्रश्न कर सकता है कि तुम कौन हो, तुम शरीर हो मन हो या जीवात्मा हो। लेकिन किसी से जब यह प्रश्न उठाया जाता है तो वह शारीरिक परिचय देता है कि मैं यह हूं, इस जाति का हूं, इनका पुत्र हूं, ये हूं वो हूं। लेकिन शास्त्र के अनुसार यह हम लोगों का अपना वास्तविक परिचय यह नहीं है। अगर मैं कौन हूं इसका उत्तर दिया जा सकता है एक शब्द में, तो यह कहा जा सकता है कि दासो अहम कृष्णस्य, जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। लेकिन हम लोग कहते तो हैं लेकिन स्वयं भोक्ता और मालिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इन प्रश्नों को अगर हम समझ जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं और हमारा संबंध उनसे जन्म जन्मांतर का है, तो इस संसार में हम रहें, संबंधी हमारे रहें या न रहें, किसी भी मोह में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट संबंध कृष्ण से है। जो नित्य संबंध है वो कभी टूटने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग या जीवात्मा, किसी भी जीव धारण करने से पहले किसी भी शरीर में जब किसी भी गर्भ में रहता है, तो जितना दिन तक उस गर्भ में रहा उतने दिन में ही वो बहुत से संबंधी उसने बना लिया और उसी को अपना बना लिया कि जिस शरीर से मैं उत्पन्न हुआ हूं वह मेरा है और इस शरीर से संबंधी जितने लोग हैं वो मेरे हैं। और यही मोह बार बार हम लोगों को इस संसार में लाता है। पिछले अध्याय में हम सुन चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, यह बात बताई गई है कि जीव के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी को पैदा कर सके। भगवान किसी जीव को जब गर्भ में डालना चाहते हैं तो किसी जीव को उत्पन्न करते हैं, उनकी कृपा से कोई किसी का माता और पिता बनता है। तो जीव के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं कि किसी को जन्म दे सके। हम लोग इस संसार में देखते हैं या इस कथा को ही हम लोग लें, चित्रकेतु महाराज किस एक करोड़ रानियां थी, एक नहीं एक करोड़ रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं था। यह भी भगवत कृपा के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए हम अपने संबंध किससे जोड़ें, कौन हमारा वास्तव में हमारा संबंधी है, यह बात खुद जीवात्मा जो चित्रकेतु नाम चित्रकेतु के पुत्र के रूप में आया था, वह खुद ही अपने पिता से पूछेगा कि आप ये बताइए, इस शरीर से पहले आप हमारे पिता थे और मैं कहां था, मेरा आपसे क्या संबंध था। अब बताइए, अगर कोई मरा हुआ जीवात्मा, मरा हुआ शरीर अचानक उठ करके और शरीर धारण करके बोलना शुरू करे कि आप मेरे क्या लगते हैं, तो लोग डर के भाग जाएंगे, भैया भूत प्रकट हो गया, भागो भागो। लेकिन नारद जी के योग बल से वह जीवात्मा बोलना शुरू किया है, और उसी जीवात्मा के लिए यह शब्द आया है जीव उवाच। अब शरीर की धरातल से ऊपर उठ करके चित्रकेतु जी जब वैराग्य की स्थिति में आते हैं, तब समय देख के, समय के अनुकूल भगवान के शुद्ध भक्त वैराग्य युक्ति को तनिक के रूप में उस जीवात्मा को देते हैं, क्योंकि समय की अनुकूलता देख करके। अब यहां नारद जी और अंगिरा जी चित्रकेतु को उस स्थिति में ला दिए कि अब यह समझ सकता है कि मेरा संबंध किससे है और मैं कौन हूं। जब समझ जाएगा तो फिर अपनी पुनः स्थिति में आएगा, क्योंकि हम लोग इससे पिछले अध्याय में जो 15 से पहले अध्याय 14 अध्याय था, उसके अंदर हम लोग सुन चुके हैं कि वृत्रासुर असुर के रूप में थे, लेकिन कितनी सुंदर उन्होंने भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना किया। एक भगवान के एकनिष्ठ भक्त भी उस स्थिति में नहीं प्रार्थना कर सकते। इसलिए अब हम लोग उस श्लोक को पढ़ करके और समझने का प्रयास करें कि यह श्लोक हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहा है। लगभग सब लोग ऐसे मजबूत जंजीर से बंधे हुए हैं, बिना बांधे हुए बंधे हुए हैं, और वह बंधन है मन का। आगे के श्लोक में आएगा इस अध्याय में कि किसी ने किसी को बांध नहीं रखा है, लेकिन मन ने मान लिया है कि यह मेरा है या मेरी है, उसी बंधन से बंध करके जीव इस जगत में दुख भोग रहा है। पहले इस अध्याय के पहले और दूसरे और तीसरे श्लोक के अंदर अनुवाद तात्पर्य नहीं है, इसलिए यहां श्लोक नंबर 4 लिखा हुआ है। तो मैं श्लोक नंबर 1, 2 और 3 का अनुवाद पढ़ूंगा, उसके बाद श्लोक नंबर 4 उच्चारण करके और उसके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का प्रभुपाद जी ने नाम दिया है राजा चित्रकेतु का परमेश्वर से भेंट। इस अध्याय के अंदर शंकरषण देव प्रकट हुए। जब नारद जी ने ब्रह्म विद्या दिया कि इस मंत्र का जाप करो, तो शंकरषण जी प्रकट होते हैं। आगे के श्लोक में इस अध्याय में आएगा कि वह मंत्र क्या था। पहला श्लोक है बादरणी बादरायणी उवाच। बादरायणी किसका नाम है? बताइए, बादरायणी किसका नाम है? बदरी वन में मतलब बद्रिकाश्रम में कौन निवास करते थे? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी के पुत्र बने सुखदेव गोस्वामी, इसलिए उनका नाम आया वादरायणी उवाच। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से यह कथा बोल रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, नारद ऋषि ने अपनी योग शक्ति से शोकाकुल स्वजनों के समक्ष उस पुत्र को ला दिया और फिर से इस प्रकार बोले। नारद जी अपने योग शक्ति से उस जीवात्मा को जीवित कर दिए और जीवित करने के बाद नारद जी फिर उस जीवात्मा से कहते हैं, जीवात्मन नारद उवाच, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पीतरम चते सुहृदो बांधव तप्ता सूचा त्वत्कृतया शुभम। कितनी सुंदर श्लोक है। नारद जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, जीवात्मा पश्यम भद्रम ते, हे जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो, मातरम पीतरम ते पश्य, तुम उठो और अपने समक्ष जो तुम्हारे माता पिता संबंधी हैं उनको देखो। पहले तो आशीर्वाद दिए कि भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, उसके बाद कहते हैं कि पश्य मातरम पीतरम चते, तुम अपने माता और पिता को और अपने संबंधियों को देखो। सुहृदो बांधव तप्ता, तुम्हारे सुहृद मित्र बंधुजन तापता तप्त हो रहे हैं, शोककुल हो रहे हैं, तुम देखो और उनको संतुष्टि प्रदान करो। अब यह बताओ कि तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? श्री नारद मुनि ने कहा, हे जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो, जरा अपने माता पिता को तो देखो। तुम्हारे चले जाने से अर्थात मरने से तुम्हारे समस्त मित्र तथा संबंधी शोकाकुल हैं। इस संसार में यही होता है, किसी के भी कोई संबंधी चले जाते हैं तो इस प्रकार का दुख होता है। तब श्लोक नंबर 3 में कलेवरम समाविश्य शेषमायु सुहृतवतः भुक्ष भोगान पितृप्रत्तान अधितिष्ठत निपासनम। हे राजा के संतान, नृपातमज शब्द आया है, नृपातमजम, हे नृप के आत्मज, क्योंकि तुम असमय में मर गए थे। चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी माताओं ने विष दिया था। इससे इस श्लोक से यह झलकता है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है, सांप काटता है, आत्महत्या करता है, तो वो अपनी कुछ आयु शेष रखने के कारण उस जीवात्मा को भटकना पड़ता है। नारद जी कह रहे हैं कि तुम अपनी कुछ शेष आयु छोड़ करके यह शरीर त्याग दिए हो, इसलिए तुम अपनी शेष आयु पूरी करने के लिए फिर शरीर धारण करो और निरुपासनम, राजा की जितनी प्रॉपर्टी है उसके तुम अधिकारी बनो, अर्थात तुम राजा बनो। इस श्लोक से यही संकेत मिलता है कि जो जीवात्मा असमय में शरीर छोड़ देता है तो उसकी आयु कुछ शेष रहती है। लेकिन इतना कहने के बाद, नारद जी के कहने के बावजूद भी, अब वो जीवात्मा क्या उत्तर दे रहा है, उस चीज को समझने की जरूरत है। श्लोक नंबर 3 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तुम असमय में मरे थे, इसलिए तुम्हारी आयु अब भी शेष है, अतः तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश करके अपने मित्रों तथा स्वजनों सहित शेष जीवन का भोग करो। अपने पिता द्वारा प्रदत्त यह समस्त ऐश्वर्य तथा राजसिंहासन स्वीकार करो। अब स्वस्थ है ना, अब हम लोग भी बीमार हैं। इस संसार में जितने लोग आए हैं कोई नहीं कह सकता है कि मैं स्वस्थ हूं। इसलिए श्लोक में शब्द आया है स्वस्थ है न मनसा, पिछले अध्याय में, कि तुम अपने मन से पहले स्वस्थ हो जाओ, बीमार मत हो, क्योंकि सारी ये मन की बीमारियां हैं, या मेरी है या मेरा है या तेरा है या तेरी है। इस स्तर से तुम ऊपर उठोगे तब समझ पाओगे, और यह बीमारी सबके अंदर है। जब हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे, भगवत तत्व की समझने की इच्छा करेंगे और गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा रखेंगे, तो यह जो स्वस्थ शब्द आया है कि हम लोग जैसे संसार में हम लोगों की जो मन की बीमारी लगी है उससे ऊपर उठ करके भगवत तत्व को समझ सकते हैं। अब जीव क्या बोल रहा है, अब हम लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, इस श्लोक में खुल जाएगी। हम किसके क्या हैं, अब इस श्लोक को एक एक दो दो लोग आप लोग बोलिएगा, एक दो बार आवृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि रूपात जी का जो नियम है और जो श्लोक का आस्वादन है हम लोग इसी आधार पर समझ सकते हैं। कृपा करके मेरे पीछे बोलिए, जीव उवाच कस्मिन् जन्मानि अमि मह्यं पितरः मातरः अभवन् कर्मभिः भ्राम्यमाणस्य देवतिर्य नृ योनिषु। जीव उवाच कस्मिन् जन्मये मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्मभिः भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्क योनिषु। जीव उवाच कस्मिन् जन्मये मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्मभिः भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्क त्रियोनिषु। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। जीव उवाच जीवात्मा ने कहा, कस्मिन् किस जन्माने जन्म में अमे ये सब मह्यम मुझको पितरह पितृगण मातरह मताएं अभवन थे कर्म भी कर्मफल से भ्राम्यमाणस्य भ्रमण करने वालों के देवतिर्यक देवताओं तथा निम्न पशुओं के नृ तथा मनुष्य जाति के योनिषु गर्भों में। अनुवाद नारद मुनि की योग शक्ति से जीवात्मा थोड़े समय के लिए मृत शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ और नारद मुनि के अनुरोध पर इस प्रकार बोला, मैं जीव अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता हूं। देखिए हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों की स्थिति यही है। इस प्रकार कभी देवताओं के योनि में रहता हूं तो कभी निम्न पशुओं में अथवा वनस्पतियों में और कभी मनुष्य योनि में रहता हूं। अतः ये किस जन्म में मेरे माता तथा पिता थे? वास्तव में न तो कोई मेरी माता है और न तो कोई पिता है, तो मैं इन दोनों व्यक्तियों को अपने माता पिता के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अब विचार कर सकते हैं कि अपनी स्थिति कहां है। अगर कोई भी किसी का संतान अगर इस प्रकार की बातें करे, अगर तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे माता पिता नहीं हो, और रोज सुना जाता है फिर भी वैराग नहीं होता। आज की संतानें कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, फिर भी वैराग्य नहीं होता। वही मन रूपी रस्सी से इतने मजबूती से बंधे हुए हैं कि रोज डांट सुनने के बाद भी हम वही के वही हैं। अब खुद ही मरा हुआ जीवात्मा उस मृत शरीर में प्रवेश करके और सशरीर बोलने लगा, मैं कौन हूं और तुम्हारे से मेरा संबंध क्या है, तुम किस योनि के तुम माता पिता हो हमारे, इससे पहले कहां थे, इस प्रकार का आत्म तत्व विवेचन का यह श्लोक है कि इससे पहले कहां थे, कस्मिन जन्म मई मह्यम, कस्मिन किस जन्म में, जन्मई जन्मानी शब्द है बहुवचन में, क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि हम लोगों के इतने जन्म हो चुके हैं, हम लोग इतने शरीर धारण किए हैं कि जितने गंगा जी के अंदर बालू हैं उतने शरीर हम लोगों ने धारण कर चुके हैं। भगवान ने इतनी बड़ी जरूर कृपा किया है कि उन शरीरों के विषय में हमने क्या किया, किस योनि में थे, क्या थे, कुछ ज्ञात नहीं है, नहीं तो और शोकाकुल हो जाते हैं। एक जन्म में माता पिता बनने का तो इतना दुख, कितने दुख हम लोग इकट्ठा किए होंगे, अगर वो सारी दुख अगर याद होती तो सोच भी नहीं सकते। एक जन्म में मां और पिता स्वीकार करने में जीव को इतनी बड़ी बंधन, इसलिए वास्तविक माता पिता और अपने वास्तविक संबंधी हैं किसी भी जीवात्मा का तो भगवान। कितना सुंदर प्रश्न जीव कर रहा है कि कस्मिन जन्म मई मातरः पिता, तुम किस जन्म के तुम मेरे माता पिता हो। इस प्रकार की श्लोक का विवेचन श्रीमद् भागवतम के अंदर कश्यप जी अदिति से भी बताते हैं कि कश्य के आदि पुत्रादि मोह वही कारणम। जब अदिति प्रार्थना कर रही है कि हमें ऐसे संतान दीजिए कि जो इंद्र हरणम कर सके, जो इंद्र को मार सके, तो पुत्र विमोहन में वो भी थी, तो कश्यप जी कहते हैं कि ये कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पति है, मोह एव ही कारणम, केवल मोह ही मेन बंधन है, इसलिए इस मोहन को काटने के लिए, इस बंधन को काटने के लिए सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन है तो साधुओं की संगति है। इसमें प्रत्यक्ष देखा जा रहा है इस प्रसंग में कि नारद जैसे और अंगिरा जैसे शुद्ध भक्त, उन्होंने उपदेश दिया चित्रकेतु को, तो अब उस स्थिति में आए कि अब हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध किससे है। इसलिए इन सब तत्व विवेचन को भगवान ने गीता में भी अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, इस मेरे गुह्यमयी रहस्यमयी जो वार्तालाप जो हम और तुम कर रहे हैं, इसको वही शरीर, वही जीवात्मा, वही व्यक्ति समझ सकता है जो शारीरिक धरातल से अपने को ऊपर उठा लिया है। नहीं तो इस रहस्यमयी वार्तालाप, इस गुह्य रहस्य के विद्या को जो शरीर के बंधनों में आसक्त है, वह व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ सकता। आगे उन्होंने गीता में उदाहरण दिया कि संसार में तुम हो, तुम भी मोह उत्पन्न जनक स्थिति में पड़े हुए फंसे हुए हो, जब तुम उस स्थिति में नहीं आओगे जैसे पानी में कमल है, जब तक उस स्थिति में तुम नहीं आ पाओगे कि संसार में रहते हुए भी कमल का जल से कोई संसर्ग नहीं रहता, उस स्थिति में नहीं आओगे तब तक तुम इस मेरे रहस्यमय वार्तालाप को नहीं समझ पाओगे। वही चीज यहां है, जब तक हम लोग शरीर के धरातल से अपने को ऊपर उठाएंगे नहीं, तब तक भागवत क्या कहता है, भागवत से दो अर्थ हैं, व्यक्ति भागवत और भगवान, इन दोनों के बात को हम नहीं समझ पाएंगे। जब तक शारीरिक विमोहन है तब तक कितना भी उपदेश दे लीजिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन जब तक तत्वता हुआ व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक कहते रहेगा लेकिन छूटेगा नहीं। साधु के वचन को और भगवान के बात को अगर वो ठीक से समझेगा तब इस स्थिति में आ सकता है। कितना सुंदर जीव उपदेश यहां दे रहा है कि क्रम कर्म भी भ्राम माणस्य, हम लोग किस कारण से इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि जहां हमारी लगाव हुई, जिस किसी भी वस्तु से, जिस किसी व्यक्ति से, जिस किसी घर से, किसी भी प्रकार की संसारिक वस्तु की कामना हुई और उससे हम बंध गए, तो कर्म भी ब्रह्ममाणस्य, हम फिर इस संसार में भ्रमण करने के लिए आएंगे। हम लोगों ने देवता का भी शरीर धारण, इस श्लोक बता रहा है कि देव तिरियक नरी मानिसी, हम देवता भी बन चुके थे। तिरियक एक जीव होते हैं जो घास को पकड़ करके घास के सहारे रेंगते हुए चलते हैं, जिसको भागवत में जोंक के नाम से जाना जाता है। उसकी चलने की यह प्रक्रिया है कि पिछले शरीर के किसी भाग से जिस घास को पकड़ी रहती है उसको तब वो छोड़ती है, पिछले वाले अंग से छोड़ती है, जब आगे वाले अंग से उस अगले घास को पकड़ लेती है तब पिछले वाले पकड़े हुए स्थिति को छोड़ती है। रेंगने वाले जीव यह भी हम लोग बन चुके हैं, पशु भी बन चुके हैं, और अन्य नरी का अर्थ है मनुष्य जाति भी बने हुए हैं, मनुष्य भी बने हुए हैं, और योनिशु का अर्थ है कि कोई भी शरीर हम लोगों ने धारण किया है, किसी भी शरीर को बाकी नहीं छोड़ा। अब सोचिए कितना गोल्डन चांस इस मनुष्य शरीर में है कि हम लोग बैठ करके आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध किससे है और क्या करने के लिए इस संसार में आए हैं। इन सब चीज को मनुष्य ही इन सब तत्वों को समझ सकता है और मनुष्य के समझने के लिए और अच्छे रास्ते पर चलने के लिए ही वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया कि पढ़ करके प्रणाम करके इन कथाओं को सुन करके जीव अच्छे संगति में पढ़ सकता है। संगति पर इतने श्लोक हैं भागवत के अंदर कि लगभग चार तिहाई श्लोकों में से कम 70-80% तो श्लोक ऐसे हैं केवल सत्संगति की महिमा बताई गई है कि संगति से जीवात्मा अपने आप को बचा लेता है। गोपीजन भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी कहते हैं, कृष्ण से ही उन्होंने प्रश्न किया है कि तुम किस प्रकार के प्रेमी हो, जो तुमसे प्रेम करते हैं उससे करते हो या जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उससे भी आपका कोई प्रेम है, या जो नहीं किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं उससे आप प्रेम करते हैं। तो तत्वतः देखा जाए तो भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सिद्धांत तो यह है। कोई भी जीव किसी भी योनि में है तो भगवान का संतान है, लेकिन भगवान ने सिद्धांत स्थापित करने के बाद यह बताए हैं कि जो जीव मेरे तरफ उन्मुख होता है, मुझसे प्रेम करने का प्रयास करता है तो मैं उससे खास प्रेम करता हूं। इसलिए मनुष्य शरीर जो है विशेष अवसर प्रदान करता है कि भगवत संबंधी तत्व को हम जल्दी पकड़ सकते हैं और अपना हम जल्दी उद्धार कर सकते हैं। यह मनुष्य शरीर की विशेषता है। इसलिए इस मर्त जगत में खास करके आकर के देवता लोग भी इस स्थिति को या इस रस को लेना चाहते हैं, जिसके लिए तरसते हैं, क्योंकि देवताओं की स्थिति मनुष्यों से बहुत ऊंची है। फिर भी जिस प्रकार से हम लोग इस मर्तलोक में मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति शुद्धता के साथ कर सकते हैं, उसका वो आंकलन करने के लिए वो कहते हैं कि हम लोगों की जीवन तो केवल हम लोगों का शरीर तो भोग योनि है, लेकिन मर्तलोक में जो जीव अगर आत्म तत्व के विवेचन में भक्ति पथ पर चल करके भक्ति का आनंद ले रहे हैं वह हम लोगों से भी सुखी है। हम लोग ऐसे प्लेटफार्म पर हैं, ऐसे जगह पर हैं जहां से अच्छी तरह से हम भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं, यहां से अगर कोई शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं तो अधोलोक को जा सकते हैं। इसलिए जिन जीवात्माओं को यह शरीर मिला है, इस शरीर की फलश्रुति भागवत के अंदर बताई गई है कि सवय पुंसाम परो धर्म जतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता अयात्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्य जीवन का फल बताया गया है भागवत के अंदर कि एक ही इस शरीर की फल है, वह है भगवान अधोक्षज की सेवा करके। और वह सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित और किसी भी कारण से रहित, यह नहीं कि भगवान हमको यह चीज दे दोगे तो मैं आपकी भक्ति करूंगा, यह हमारी पूरी हो जाएगी तो मैं यह करूंगा, इस प्रकार का कोई कंडीशन नहीं। सवै पुंसाम पर्व धर्म, सभी मनुष्यों का परम धर्म है केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना। उसी अध्याय के अंदर बताया गया है कि संसिद्धि हरि तोषणम, मनुष्य जीवन का दूसरा फल यह है कि इस शरीर से ऐसा कार्य करे जिससे भगवान को संतुष्टि महसूस हो, खुश रहे। संसिद्धि हरि तोषणम, भगवान खुश हो वैसे काम करना है, वैसे कार्य नहीं करना है कि जिस कार्य को करने से भगवान नाराज हो। यह मनुष्य शरीर का दूसरा फल है। लेकिन कहां कहां हम लोग भटक रहे हैं इन सब कार्यों को छोड़ करके। श्रम एव ही केवलम, कुछ मिलता नहीं है इस शरीर से जितना हम लोग परिश्रम करते हैं। अगर भक्ति संबंधी कार्य नहीं करते हैं तो केवल श्रम हाथ लगता है, परिश्रम हाथ लगता है। पवर्ग की स्थिति में हम लोग इस संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे, जब अपवर्ग की स्थिति में आएंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और वही चीज इस मनुष्य शरीर में समझने के लिए सारे उपयुक्त साधन भगवान ने दिया है, साधु भी दिया है, शास्त्र भी दिया है। भगवान अपने स्वरूप को बार बार इस मृतलोक में लीला करने के लिए और हम लोगों को याद दिलाने के लिए कि उसका स्मरण कर सके जीव आते हैं। अब इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य लिखते हैं, प्रभुपाद के तात्पर्य को समझने का प्रयास करें हम लोग। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, कि यहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जीव भौतिक देह में प्रवेश करता है जो कि यंत्र अर्थात मशीन के तुल्य है। गीता में भी एक श्लोक आया है, यंत्रान रूढ़ाने, इस देह रूपी यंत्र को लेकर के हम लोग विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, यांत्रिक विधि से चल रहे हैं, जिसकी रचना पांच स्थूल तत्वों से पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश तथा तीन सूक्ष्म तत्वों मन बुद्धि अहंकार से हुई है। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि उत्तम तथा अधम ये दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, इन और इन दोनों का संबंध श्री भगवान से है। क्योंकि जब तक हम लोग उत्तम नहीं बनेंगे, उत्तम बनने का अर्थ यह है कि जब तक भगवत तत्व रहस्यमय प्राप्त करने का हम इच्छुक नहीं बनेंगे। भगवान की तो प्रकृति के विषय में यहां वर्णन है, परा और अपरा, उसी को अधम और उत्तम कहा गया है। तो जब तक हम उत्तम स्थिति में अपने को नहीं लाते हैं, भगवत संबंधी रहस्य से अपने को हम नहीं जोड़े रहते हैं, तब तक हमारी स्थिति संशय युक्त है, अर्थात खराब कर लीजिए। संशय क्या है, हम फिर इस संसार में आ सकते हैं। उत्तम तथा अधम ये दो प्रकार की प्रकृतियां हैं और इन दोनों का संबंध श्री भगवान से है। जीवात्मा के कर्म फल के अनुसार ही जीव विभिन्न प्रकार के देहों में प्रवेश करने के लिए बाध्य है। अब हम जो कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा अगला शरीर तैयार होगा। और मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें यह सारे साधन है कि हम अपने आप हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर महाराज चित्रकेतु तथा रानी कृतदित्यु का पुत्र ही वह जीवात्मा है, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार वह राजा तथा रानी द्वारा निर्मित शरीर में प्रविष्ट हुआ था। और वही जीव एक लाइन में कह दिया कि मैं कौन, मेरा आपसे क्या संबंध है। इसका अर्थ यह निकलता है कि हम लोगों का किसी के शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। तत्वतः पीछे हट करके देखें तो हमारा संबंध केवल भगवान से है। असली संबंधी इस प्रकार का भी श्लोक भागवत के अंदर आया है कि जितने भी संसार में संबंध स्थापित करने के जो नातेदारी हैं, सारे संबंध भगवान के पास हैं। मां का प्रेम भगवान दे सकते हैं, पिता का प्रेम भगवान दे सकते हैं, जितना भी किसी भी प्रेमी का जो संबंध है और प्रेम है, वो सारे संबंधों को अकेला भगवान पूरा कर सकते हैं। लेकिन वैसे प्रेम सशरीर जो प्रेम है, जिनका शरीर ही केवल प्रेम है, वैसे प्रेमी को छोड़ करके जीवात्मा इस संसार में डेली मार खा रहा है। प्रतिदिन माया उसको प्रताड़ना कर रही है, फिर भी जीव को होश में नहीं आता कि नहीं, अपने असली संबंधी भगवान है। भगवान नरसिंह देव से प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, वास्तव में जो प्रेम आप जितना दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए किसी भी जीव के वास्तविक प्रेमी आप हैं। अगर हम इस वाक्य को धारण करते हैं कि भगवान ही सबके प्रेमी हैं और इस वाक्य को फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि भगवान ही प्रेम प्रदाता है, तो हम अपने प्रेमी को वास्तव में जान लेंगे। इस संसारिक देह में देह से प्यार करने के लिए कितने उलाहना, कितने कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भगवान प्रेम देने के लिए सशरीर खड़े हैं। उनके शरीर में प्रेम छोड़कर और कोई चीज है ही नहीं। उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज सातवें स्कंद के अंदर कि हे भगवान, हे नरसिंह देव, एक मां के शरीर में एक बूंद का करोड़वां अंश प्रेम आपने दिया है, जिस प्रेम के कारण मां अपने पुत्र स्नेह में बंद करके अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर को कष्ट में रख करके अपने संतान की रक्षा करना चाहती है। तो ये भगवान, जब इतनी छोटी सी प्रेम देने वालों में से आप इतना प्रेम मां करती है, तो जो सब माताओं के शरीर में आपने जो प्रेम दिया है, तो वैसे आप कितने प्रेमी हैं। इसलिए है नृसिंह देव, जितना आप प्रेम दे सकते हैं, जितनी कृपा आप दे सकते हैं मेरे पिता को, और कोई नहीं दे सकता। प्रार्थना करते हैं नृसिंह देव से, प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, किसी भी जीव को प्रेम दे सकते हैं तो केवल भगवान। इस संसार में प्रेम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, काम है। कृष्ण इंद्रिय तृप्ति तार नाम प्रेम, निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम। कृष्ण को खुश करने का जो कार्य किया जाता है, उसी का नाम प्रेम है। इस संसार में काम नाम की चीज को छोड़कर के प्रेम नाम की चीज आई नहीं, किंतु वास्तव में वह उनका पुत्र न था। जीवात्मा तो श्री भगवान का पुत्र है, और चूंकि वह इस जगत का भोग करना चाहता है, अतः भगवान उसे विभिन्न देहों में प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं। जीवात्मा का उस भौतिक देह में कोई संबंध, भौतिक देह से कोई संबंध नहीं रहता जिसे वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। वह तो परमात्मा का भिन्न अंश है और विभिन्न देहों में जाने के लिए उसे छूट मिली ही रहती है। माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर का वास्तव में तथा कथित सृष्टिकर्ता से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जीवात्मा ने सीधे नकार दिया कि महाराज चित्रकेतु तथा उसकी पत्नी उसके माता पिता नहीं है। अगर हम लोग इस बात को अपने ऊपर लेते हैं कि हम अपने संतान के माता पिता नहीं हैं, और कृष्ण भक्ति को अगर हम ठीक से जान लेते हैं तो इस संसार में हम बंधे कहां। लेकिन यह हो नहीं पाता, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम लोगों ने जन्म जन्मांतर में यही सीखा, यह मेरा है, यह मेरी है, ये है, वो है। कभी उस तत्व विवेचन पर कभी विचार नहीं किया कि ये सब केवल देखने के लिए है, सपने के समान है, ये हमारा वास्तविक में कोई चीज यहां है ही नहीं। अगर शुरू से इस बात को अगर हम जानने का प्रयास करते तो इतना हमारे ऊपर कोई बंधन, मजबूत बंधन नहीं लगता। लेकिन हम लोग हर योनि में प्रयास यही किए कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, और वही बंधन आज तक पड़ा हुआ है जो ठीक से हमें समझने नहीं दे रहा है भगवान को। अगर हम संतान को अगर अपना मानना छोड़ दें, अपनी संपत्ति अपने पास जो कुछ है वो भगवान का मान लें, जो कोई भी संतान है वो भगवान का मान लें, वो अपना न मान करके हम अपने कार्य में लगे रहे तो बंधन कहां है? बंधन तो वहां है जिस पर हमने अपना स्टैंप लगा दिया है, मेरा है। दिस सन प्रोडक्ट माई मी, मतलब यह संतान मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। अरे तुम कौन होते हो करने वाले, उत्पन्न करने वाले? सबई भूमि गोपाल की, सब कुछ उनकी है, तो उस स्तर से देखने का प्रयास करो। अगर यह सिद्धांत समझ में आ जाती है, इस सिद्धांत को समझने के लिए जिस प्रकार सावधानी के साथ चित्रकेतु महाराज सुने, वैसे सुनने से ही सारे बंधन छिंदे होते हैं, कटते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं और इसको समझेंगे नहीं और वैसे संगति नहीं मिलेगी, तब तक तो हम यहीं के यहीं हैं। और यही कारण है कि इतने सुनने के बावजूद उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, जिसके कारण यहां बंधे हैं। यह तभी संभव है गुरु, कृष्ण और साधु, इन तीनों की कृपा पर निर्भर होते हुए हम नित्य प्रतिदिन भगवत प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान मेरे बुद्धि को सुधारिए, मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए और मुझे ऐसी संगति प्रदान कीजिए जिससे हम इस संसार की कुसंगति से बचते हुए आपके चरणों में लगा रहो, तब हम इस चीज को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। क्या तो वही तो इस स्मृति को भुलाने के लिए ही तो वह पूछा। उनके नारद जी के योग माया से उस शरीर में उन्होंने प्रवेश किया, माता पिता के इच्छा से उस शरीर में फिर वह पुनः नहीं आया। इसलिए नारद जी की उक्ति को वो जीवात्मा प्रकट कर रहा है। शारीरिक स्तर पे अगर उनका अगर पुत्र, वही पुत्र अगर बन करके आया होता तो अपने माँ माता पिता की तरफ से, माता पिता की तरफ जैसे उनके अनुसार वो वार्तालाप करता, लेकिन योग शक्ति से वही जीवात्मा उस शरीर में नारद जी ने उनको प्रवेश कराया और वह आत्मतत्व के स्तर पर आकर के तब वहां आत्मविवेचन कर रहा है, बोला है। नहीं तो मान लिया होता कि अगर आप ही हमारे माता पिता हैं तो औरों नहीं समझते और मुंह में फंस जाते। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, उपस्थित भक्तवृंद की, गौर हरि प्रेमानंद।